بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہم ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. تو ملاحظہ فرمائیے، ہمارا آج کا پروگرام انداز جہاں جس کا موضوع ہے غزہ پر اسرائیل کی یلغار اور وحشیانہ حملے. جی ناظرین، غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے دوران اب اسپتال، طبی مراکز اور ایمبولنس سے نیز مریض اور زخمیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو عالمی قوانین کے مطابق جنگی جرائم شمار ہوتے ہیں. صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے پوری گستاخی کے ساتھ کہا ہے کہ غزہ کے اسپتالوں پر اپنے حملے ہم جاری رکھیں گے. منگل کو بھی غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں درجنوں بے گناہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. صہیونی فوجیوں نے غزہ پر اپنے وحشیانہ حملوں کے دوران انواع و اقسام کے غیر روایتی اور ممنوع ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا ہے اور کر رہی ہے. صہیونی حکومت نے غزہ کے نیتھے باشندوں پر فاسفورس اور کلسٹر بموں کا استعمال کرنے کے علاوہ جدید ترین غیر روایتی ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا ہے. اس کے علاوہ صہیونی فوج غزہ کے باشندوں کے خلاف ڈائم بموں کا بھی استعمال کر رہی ہے، جس سے نکلنے والی بھاپ انسانی جسم کو گلا دیتی ہے. یہ بم امریکی فضائیہ نے تیار کیے ہیں. اس درمیان امریکہ نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ غزہ میں فلسطینی مجاہدین کے جوابی حملوں میں مارے گئے درجنوں اسرائیلی فوجیوں میں دو امریکی فوجی بھی شامل ہیں. امریکی حکومت کے اس اعتراف کے بعد یہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے کہ امریکہ اسرائیل کی نہ صرف مالی، فوجی اور سیاسی مدد کر رہا ہے، بلکہ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف ہونے والے مظالم میں امریکی فوجی بھی شریک ہیں. سوال یہ ہے کہ اسرائیل جتنے بھی اسلحے استعمال کر رہا ہے وہ غیر قانونی اور مہلک ہیں، اور جو بھی اقدامات انجام دے رہا ہے وہ جنگی جرائم شمار ہوتے ہیں. تو کیوں عالمی ادارے اور بڑی طاقتیں اسرائیل کے خلاف کچھ بولنے سے قاصر ہیں، جبکہ عراق پر غیر قانونی ہتھیار رکھنے کا جھوٹا بہانہ بنا کر اس ملک کی یعنی عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، اور 10 لاکھ سے زائد لوگ امریکہ کی لشکر کشی میں مارے گئے تھے. بہرحال آج کے پروگرام میں ہم غزہ میں اسرائیل کی درندگی اور صفاکیت کا جو ننگا ناچ امریکہ اور مغرب کی سرپرستی اور علاقے کے بعض رجت پسند حکومتوں کی مجرمانہ خاموشی کے تحت ہو رہا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. مگر پہلے ملاحظہ فرمائیے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ یہ رپورٹ.
عالمی طاقتوں کی واضح اور پوشیدہ حمایتوں کے ساتھ غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کے بہیمانہ حملے جاری ہیں، اور منگل کو غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 20 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ صہیونیوں نے اپنے دو فوجیوں کی موت کو تسلیم کیا ہے. اس طرح سے صہیونی حکومت نے اب تک اپنے 27 فوجیوں کی ہلاکت قبول کی ہے، جبکہ قسام بریگیڈ کے بیانات کے مطابق اس جنگ میں مارے جانے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. ان حالات میں منگل کے روز شہید ہونے والے 20 فلسطینیوں میں 6 ایک ہی خاندان کے تھے جن کے پاس جرمنی کی شہریت تھی. اسی طرح صہیونی توپوں نے خان یونس میں امدادی گاڑیوں اور ایمبولنسوں کو بھی نشانہ بنایا، جبکہ صہیونی بحریہ نے غزہ کے ساحل پر بمباری کی. غزہ کے شجاعیہ علاقے میں صہیونی حکومت نے جس طرح سے حملے کیے اس کے نتیجے میں ایک ہی دن میں 120 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ شجاعیہ پر صہیونیوں کے حملے کو دوسرا صبر و شتیلہ کہا جا رہا ہے. صہیونی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے قسام بریگیڈ نے اپنے علاقے سے نکل کر اسرائیلی فوجیوں پر حملے کیے اور صہیونی بستیوں پر راکٹ برسائے، اور تل ابیب بھی ان کی راکٹوں سے محفوظ نہیں رہا. دریاسنا حماس کے سینئر رکن اسماعیل حنیہ نے کہا ہے کہ غزہ کو صہیونی فوجیوں کا قبرستان بنا دیں گے. اسماعیل حنیہ نے پیر کی شام غزہ میں ایک تقریر کے دوران غزہ پر حملے سے اپنے مقاصد کی تکمیل میں صہیونی حکومت کی ناکامی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مزاحمت کے مجاہدوں نے یہ ثابت کر دیا کہ غزہ صہیونیوں کا قبرستان بن گیا ہے. انہوں نے کہا کہ صہیونیوں نے ملت فلسطین کے عزم کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن خدا کے فضل اور استقامت کی وجہ سے وہ ہار گئے، کیونکہ غزہ پر صہیونیوں کے زمینی حملے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فضائی حملے ناکام رہے ہیں. ادھر امریکہ کی جانب سے صہیونی حکومت کی حمایت اور جنگ بندی کی ظاہری کوشش کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری غزہ میں جنگ بندی کرانے کے لیے مصر پہنچے ہیں. حالانکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی کی انہیں کوئی جلدی نہیں ہے، اور ویسے بھی ماضی کے تجربات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ صہیونی حکومت اور اس کے حامی اسی وقت جنگ بندی پر تیار ہوتے ہیں جب انہیں نقصان پہنچنے لگتا ہے. مصری حکومت نے غزہ میں جنگ بندی کی تجویز پیش کی ہے، اور امریکی وزیر خارجہ ایسی حالت میں مصر پہنچے ہیں کہ جب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون پہلے سے ہی وہاں موجود ہیں. حماس کا کہنا ہے کہ وہ مصر کی جنگ بندی کی تجویز کو اس لیے تسلیم نہیں کرے گا کیونکہ اس میں صرف اسرائیل کے مفادات کو پیش نظر رکھا گیا ہے اور فلسطینیوں کے مفادات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ حماس نے غاصب اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے لیے غزہ کے 7 سالہ محاصرے کے خاتمے اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی شرط رکھی ہے۔ دنیا اسنا امنسٹی انٹرنیشنل نے غزہ پر صہیونی حکومت کے حملوں اور اس حکومت کے جنگی جرائم پر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ غزہ پر اسرائیل کے حملوں کا نشانہ بننے والوں میں 77% عام شہری ہیں۔ غزہ کے حالات پر پورے عالم اسلام میں تشویش پائی جاتی ہے، تاہم دنیا بھر کے مسلمانوں کو سب سے زیادہ حیرت مسلم حکام کی خاموشی پر ہے۔
ناظرین، غزہ پر صہیونی حکومت کا وحشیانہ حملے اور فلسطینی عوام کا قتل عام اور فلسطینیوں کی نسل کشی، یہ داستان پچھلے 15-16 دن سے جاری ہے، لیکن عالمی برادری، عالمی ادارے اور خاص طور پر علاقے کی بعض رجعت پسند حکومتیں مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگرچہ چاہے وہ اسلامی دنیا ہو یا یورپی دنیا ہو یا براعظم امریکہ کے ممالک ہوں یا ایشیائی ممالک ہوں، ہر جگہ عوام سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں اسرائیلی مظالم کے خلاف، لیکن حکمراں خاموش ہیں۔ اس وقت چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ صحافی اور تجزیہ نگار محمد احمد کاظمی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کاظمی صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ 2 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور قتل و غارت گری اور آگ و خون اور آہن کی بارش ہو رہی ہے غزہ پر، اسرائیل اس نسل کشی اور قتل عام سے فلسطینیوں کے اب تک کیا حاصل کر سکا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک جس قسم کے حملے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر ہوئے ہیں، پہلے ہوائی حملے اور اب زمینی حملہ، اس سے عوام کا، بے گناہ لوگوں کا کی بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ دیکھنے کی ہے کہ زمینی حملے کی اسرائیل کو کیوں ضرورت پڑی، جبکہ اس کے پاس بہت ہی جدید قسم کے ہوائی فورس، ہوائی فوج اس کے پاس ہے، اور اس کے بعد بھی اس کو زمینی حملہ کرنا پڑا۔ لیکن اس میں خاص بات یہ سمجھنے کی ہے کہ زمینی حملہ جب سے شروع ہوا ہے 2 دن پہلے سے، جب سے اسرائیلی فوجیوں کے مارے جانے کی تعداد بھی بڑھی ہے اور وہ بار بار حماس کے جو لڑاکو ہیں ان کے زد میں آ رہے ہیں، یہ ایک بات خاص ہے کہ بڑی تعداد میں فلسطینی عوام کے مارے جانے کے باوجود وہاں جو جوش اور جذبہ ہے جو حماس کی لیڈرشپ نے ظاہر کیا ہے، اور عوام جس طرح سے کسی بھی حملے کے بعد سڑکوں پر نظر آتے ہیں، وہ ان کو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں کی عوام اپنی جان دینے سے یا شہادت سے ڈری نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اسرائیلی فوجی مزید اندر آئیں اور ان کے خلاف کھل کر کے جنگ لڑی جائے۔ ایک خاص اور پہلو یہ ہے کہ جو ایجپٹ کی، مصر کی حکومت کی طرف سے جو جنگ بندی کی بات شروع کی گئی تھی، میں اسے دوسرے نظر سے دیکھتا ہوں معاف کیجئے، کہ اس کو چونکہ ایجپٹ میں اب وہ حکومت ہے جس کو سعودی عرب پسند کرتا ہے، جس کو امریکہ پسند کرتا ہے، جس کو اسرائیل پسند کرتا ہے، تو یہ جو پیشنہاد تھی، جو مشورہ تھا، جو پروپوزل تھا، وہ پوری طرح سے امریکہ اور اسرائیل کے کنسنٹ سے تھا اور اس میں حماس کی طرف سے کوئی خاص کوشش نہیں تھی۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ فلسطینیوں کا جانی نقصان زیادہ ہو رہا ہے، لیکن اسرائیل جنگ بندی چاہتا ہے، بہت جلدی جنگ بندی چاہتا ہے، یہ بات ظاہر ہو گئی ہے، اور اس سے وہ فرار کے راستے تلاش کر رہا ہے۔
جی کاظمی صاحب، یہ آپ نے جنگ بندی کی بات کی، اسرائیل تو تین چار دن پہلے سے ہی جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، لیکن فلسطینی گروہوں کی طرف سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 7 سال سے محاصرہ غیر قانونی محاصرہ بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی ہے، وہ محاصرہ جو غزہ کا ہے وہ حماس یہ چاہتے ہیں کہ حماس کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ اس جنگ کو اس طرح سے جنگ بندی، محض جنگ بندی اور اپنی ایک طرح سے نقصان سے صرف بچنے کی وقتی طور پر اس کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ اس محاصرے کا خاتمہ وہ چاہتے ہیں۔ محاصرے کے ساتھ ان کا جینا دن بھر ہر یعنی دوبر ہو گیا ہے، وہاں لوگوں کی زندگیاں بہت سختی میں گزر رہی ہیں، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، بے روزگاری ہے اور مختلف طریقوں سے ان کو ستایا اور پریشان کیا رہا ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بار حماس نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ وہ اگر کوئی جنگ بندی کو قبول کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہیں گے کہ محاصرہ ختم ہو اور اسرائیل کی حقیقت دنیا کے سامنے پوری طرح سے سامنے آ جائے، اور اگر یہ جنگ کچھ دن اور لمبی بھی چلے تو اسرائیلی فوج کی جو دنیا بھر میں جو ایک امیج بنائی جاتی ہے، جو پروجیکشن ہے کہ وہ دنیا کی بہترین فوج ہے، اس کی بھی حقیقت سامنے آ جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ غزہ میں جس طرح سے ٹنلز ہیں، جو سرنگیں ہیں،
جی چلتے ہیں پاکستان جہاں پر رابطے میں ہیں اس وقت جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما جناب فاروق چوہان صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی فاروق صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اتنے دن سے غزہ پر درندگی اور صفاکیت اور ہر طرح کی بے رحمی اور بہیمانہ کاروائیوں کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، لیکن علاقے کے خاص طور پر عرب ممالک بالکل خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
دیکھیں، یہ فلسطین کا جو معاملہ ہے اسے پوری طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں بات سن رہا تھا، ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی، فلسطین کا ایک تو یہ بات پوری طرح واضح ہے اور یہ اس میں اس حقیقت میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ قبضہ آج سے نہیں ہے، بڑے طویل عرصے سے آپ کے علم میں ہے۔ لیکن یہ اس قبضے کی بنیادوں میں برطانیہ بھی، پھر روس بھی، امریکہ کا بھی اپنا آج تک ایک کردار اور رول رہا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو تازہ ترین حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ 14 دن کی جارحیت ہے جو اسرائیل نے وہاں کی ہے، اور وہاں نہتے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں اور ظلم کی انتہا کر دی ہے کہ اب تک جو ہے وہ 583-600 کے قریب لوگ ہیں جو فلسطینی مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور ان میں بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور بچوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی شہید کیا گیا۔ آیا یہ بتایا جائے کہ ان کا کیا قصور تھا، اور فلسطین میں ظلم کی سیاہ رات جو ہے وہ اس پہ وہ کی ہے اور ظلم کی انتہا کی ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں جو یو این او کا کردار ہے، یو این او کا کردار آج بالکل صاف انداز میں ثابت ہو گیا ہے کہ یو این او جو ہے وہ جو اقوام متحدہ جو ہے وہ امریکہ کا اور یورپی ممالک کی کا محافظ ادارہ بن گیا ہے، اسے مسلمانوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ مشرقی تیمور میں مسئلہ ہوا، مشرقی تیمور کے اندر عیسائی ریاست کی بات ہوئی تو یہ ہمیں اقوام متحدہ فعال نظر آئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا جنوبی سوڈان میں عیسائی ریاست کے جو اس کو تقسیم کی بات کی گئی تو اس وقت بھی یو این او کا کردار بڑا شرمناک رہا کہ مسلمانوں کے وہاں ممالک کے اندر اور جہاں کہیں مسئلہ ہو وہاں تو اپنے مفادات کی خاطر، امریکی مفادات اور یورپی مفادات کی خاطر اقوام متحدہ ہمیں بڑی متحرک نظر آتی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ انتہائی شرمناک کردار ہے یو این او کا، امریکہ کا، یورپی ممالک کا، کہ وہ اس مسئلے پہ جتنا ظلم و ستم اور جتنا ظلم و تشدد وہاں فلسطین کے اندر 14 دنوں کے اندر ہوا ہے، وہاں آج بھی غزہ کے اندر
فاروق چوہان صاحب جی
کفن پڑے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا کہ جہاں تک تو یہ معاملہ ہے، یہ امریکہ کی صفاکیت کا، امریکہ کی سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے، میں جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، کہ ہم کب تک اٹھتے رہیں گے؟ یہ جو معاملہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے کہ ہمیں امریکہ پہ کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔
فاروق چوہان صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، जी फारूक चौहान साहब, अभी आपने अक्वाम मुत्तहिदा की बात की तो जाहिर है कि अक्वाम मुत्तहिदा जैसा कि आपने कहा, दुनिया जानती है कि इस वक्त बड़ी ताकतों और ख़ास तौर पर अमेरिका के मफादात का मुहाफिज इदारा बन गया। चलिए अक्वाम मुत्तहिदा को हम अलग रखते हैं, OIC तो इस्लामी मुल्कों की तंजीम है, उसने क्या किया?
ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है कि OIC से जो आलम इस्लाम को तवक्कुआत थी और जो उसे करनी भी चाहिए थी, ये हकीकत है कि OIC भी एक मुर्दा घोड़ा बन चुका है और इसका काम सिर्फ एक साल में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर लिया जाता है और उसमें नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन तक ये अमल महदूद रहता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपको OIC के साथ अरब लीग के किरदार की बात करूँ, अरब लीग का किरदार भी बड़ा अफसोसनाक है। हम दूसरों की बात करते हैं, उनसे तो हमें खैर की तो नहीं है, ना अमरीका से ना यूरोप, हमें तो अपने अपनों ने भी दुख दिया है। और ये OIC का किरदार मैं समझता हूँ मायूसकुन रहा है। इसी तरह अरब लीग ने भी कोई अच्छा किरदार नहीं अदा किया और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों का किरदार भी कोई इतना अच्छा नहीं रहा कि आज तक आप देखें इतना जुल्म हो गया है सवाए चंद ममालिक के, इस्लामी मुल्क के हुक्मरानों के अलावा किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने तो मजम्मत तक का बयान नहीं दिया। और ख़ासकर मैं अरब हुक्मरानों की बात करता हूँ कि वहाँ तो मामला वैसे का ही बड़ा अफसोसनाक है कि वहाँ अगर अरब दुनिया ही इकट्ठी हो जाती तो आज फलस्तीन को जुरत ना होती कि मशरक़ वुस्ता के अंदर वो इसराइल को जुरत ना होती कि फलस्तीन के ऊपर जुल्म करता और वहाँ पे अपने पंजे गाड़ता। ये सारे का सारा जो ये बिल्कुल ठीक बात है कि OIC के इदारे को दोबारा फाल करना चाहिए। और मैं इसके साथ आपको एक बात अर्ज करता चलूँ कि पाकिस्तान के साथ ईरान, तुर्की और सऊदी अरब, अगर ये चार ममालिक और इनकी ये चार ममालिक वो हैं जिनको इस्लामी ममालिक के अंदर आलम इस्लाम के अंदर मरकजी हैसियत हासिल है, आज भी ये चार ममालिक मुखलसाना काविशें करें मिलके मुतहिद होकर, तो इतिहाद उम्मत का ये एक जज्बा पैदा होगा, उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हल होंगे और इंशाल्लाह ये फलस्तीन के अंदर जो इसराइल की दहशत गर्दी उसको भी लगाम दी जा सकेगी। मैं इसके साथ आपको एक बात अर्ज करता चलूँ कि जैसे यूरोपीय यूनियन बनी है, यहाँ जरूरत है, अब जरूरत है, पहले हम हर वक्त कुटते रहेंगे, कब तक कुटते रहेंगे इसराइली मुजालिम के खिलाफ और कब तक अमेरिका की जो अफगानिस्तान में दहशत गर्दी उसके खिलाफ कुटते रहेंगे? आज आज इस्लामी ममालक को इसराइल की जारहियत के खिलाफ, अमेरिकी जारहियत के खिलाफ और ये मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान की जारहियत के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की तरह इस्लामी यूनियन बनानी होगी। और इसी तरह मुश्तरका करेंसी आलम इस्लाम को, जैसे यूरोपीय यूनियन की यूरो है, हमें भी मुश्तरका करेंसी अपनी को रिवाज देना होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको अर्ज करता चलूं कि बाहमी तिजारत को तमाम ममालिक, ईरान, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब, पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक आपस में बाहमी तिजारत को फरोग दें, मईशत मजबूत होगी दुनिया में तो हम इज्जत के साथ जी सकते हैं, हम इन लोगों का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर मुसलमान ममालिक की मईशत कमजोर होगी तो हमें कोई
बहुत शुक्रिया आपका, मैं फिर हाजिर हूंगा आपकी खिदमत में फारूक चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं लंदन स्टूडियो जहां पर मौजूद है डॉक्टर मकसूद सिद्दीकी, आलमी उमूर के माहिर। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम।
मकसूद सिद्दीकी साहब, आपने यकीनन खबरों में सुना होगा कि आए दिन जैसे जैसे दिन गुजर रहा है गज़ा पर इसराइल की सफाकियत और उसके वहशियाना हमलों में और ज़्यादा तेज़ी और शिद्दत आती जा रही है। आप देखें कि आज से उसने अस्पताल, तिब्बी मराकज और एम्बुलेंसों और मरीजों और हत्ता इमदादी कारकुनों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं और अब तक की इतला के मुताबिक कम से कम गज़ा में 25 अस्पतालों पर बमबारी की गई है और हमले किए गए हैं और वहाँ पर मौजूद मरीजों को शहीद किया गया। क्या ये जंगी जराइम के ज़ुमरे में नहीं आता?
बिल्कुल आता है और ये जंगी जराइम तो इनके सालों से जारी हैं और अभी जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपने देखी होगी उसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि ये जो जो इस साल का किरदार है वो बिल्कुल बिल्कुल जंगी जराइम है। लेकिन हमको अब ये देखना ये चाहिए, क्योंकि मैंने अभी पहले की गुफ्तगू नहीं सुनी तो माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ दोहरा रहा हूँ, तो वो देखना चाहिए कि आई के एकदम से इसराइल के ये जो जो इसकी इसकी जारियत है और इसका जो इस किस्म का जो जराइम जो जंगी जराइम जो हैं वो इस हद तक क्यों पहुंच गए हैं और इस ज़माने में ये क्यों क्यों शुरू हुए हैं, क्या वजह थी? मैं आपको वापस लेकर चलता हूँ जून में, जबकि वो तीन इसराइली लड़कों की लाशें मिली थी और जिसके बाद फिर वो उन्होंने फलस्तीन उसके फौरन बाद 10 फलस्तीनी बच्चों को तो शहीद किया गया था, फिर एक 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 फलस्तीनी लड़के को पेट्रोल पिला के उस आग जला के उसको उसको ख़त्म किया था। ये वहाँ से सिलसिला शुरू होता है कि जब इन तीन लड़कों को इनकी लाशें 10 दिन के बाद मिली थी, वो 10 दिन आप याद करें कि वो उस 10 दिन में इसराइल ने इतना प्रोपेगेंडा किया फलस्तीन के खिलाफ और लोगों को अपनी पब्लिक ओपिनियन को इतना उभारा, जब उनकी लाशें मिली। हालांकि वो जो इसराइल को इल्म था कि इन तीनों लड़कों के मर चुके हैं, दूसरे दिन इनकी लाशों को उन्होंने मैं फ्रीजर में 10 दिन रखा, 10 दिन के बाद उन्होंने उनको एक एक छोटी सी कवर में से निकाला, क्योंकि जब जिन लोगों ने इनकी तदफीन देखी है उन्होंने ये देखा था कि ये 10 दिन पुरानी लाशें नहीं हो सकती। यहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो 2000 में ब्रिटिश गैस ने ये पता किया था कि गज़ा की जो पट्टी है उसमें गैस की बेतहाशा गैस, और उस वक्त जो जो है नेचुरल गैस की उन्होंने जो कीमत बताई थी वो $4 बिलियन थी। तो उसके बाद जैसे आपको इल्म है कि इसराइल ने फिर गज़ा को खाली कर दिया और फलस्तीनियों के एक तरह से हवाला कर दिया, और वो जैसा कि हमको मालूम है कि एक ओपन एयर प्रिजन बना हुआ है, वो तो अलग बात है। अब हुआ यह है कि जो अभी रिपोर्ट निकली है इसराइल में, ये कि 2020 के बाद इसराइल में एनर्जी शॉर्टेज जो है यानी एनर्जी की कमी बहुत शदीद हो जाएगी। अभी भी वहाँ पे इसराइल में मज़ाहरे हो रहे हैं कि बिजली की और गैस की कमी की वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो उन्होंने यूरोप के लेवल पे किया हुआ था वो नीचे जा रहा है, उनको चाहिए गैस अपने के लिए एनर्जी के लिए। और वो अब जो जो लेटेस्ट एस्टिमेट्स हैं वो ये हैं कि जो गज़ा से जो गैस निकलेगी वो तकरीबन इसराइल के लिए 40 साल तक के लिए काफ़ी होगी। तो ये मेरे हिसाब से जो सारा जो खेल खेला गया है, जो सब ड्रामा बनाया है, ये इसी वजह से कि उनको इसको उस किसी सूरत से गैस के इसके जखीरों पर कब्जा करना है, और उनको ये मालूम है कि हमास कभी भी इस चीज़ की इसकी इजाज़त नहीं देगी, और इस वजह से ये हमास को किसी सूरत से हर सूरत से वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। अब ये जो है ये वक्त ऐसा आ गया था कि उनके पास अगर अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो एक तरह से जिसमें अंग्रेजी का क्लब्स होता है इम्प्लोड, इसराइल जो है अंदर से कोलैप्स हो जाएगा। इस जंग फलस्तीन से जंग करके एक ये भी फायदा उठाते हैं कि अपनी पब्लिक ओपिनियन जो है उसको अपनी तरफ कर लेते हैं, हुकूमत कर लेती है, ताकि उनको ये हो कि जो और भी जिन मसले मसाइल में पब्लिक अगर उलझी हुई है उससे हट के ये इसके जंग की तरफ की तवज्जो करे, और वो जो ताकि उनको एक तरह की यूनिटी वहाँ पे अपने आवाम के साथ मिले। हालांकि इसराइल में बहुत 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 ज़्यादा ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि यहूदियों के, जो कि इनकी इनकी सहूनी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन ये सारा जो ये पूरा इनका प्लान ये है कि वो इसके गैस के ज़खीरों पर किसी सूरत से कब्ज़ा करें, और वो जो हमास को, और ये कि जाहिर है कि उनका कोई इरादा नहीं है कि जिस तरह
जी
से
बहुत
उन्होंने
शुक्रिया
गजा का
आपका सजद
मुहासरा
साहब,
किया
मैं
हुआ
फिर
है
आज रहूँगा आपकी
उसका।
खिदमत में।
जी
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 बहुत शुक्रिया। नाज़रीन
जी
हमारे मेहमानों से हमारी
जी
गुफ्तगू जारी रहेगी, मगर यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं, चलते हैं दिल्ली स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं काजमी साहब। काजमी साहब, आपको याद होगा कि जब इराक़ पर हमला हुआ था, जाहिर है कि उस वक्त आपने इराक़ के हालात को बहुत ही नज़दीक से देखा, मॉनिटर किया था। मैं ये पूछना चाहूँगा कि इराक़ पर जो हमला किया गया था वो इस बात को लेकर, इस बहाने से किया गया था कि वहाँ पर आम तबाही फैलाने वाले हथियार मौजूद हैं। बाद में ख़ुद जो अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारजा कॉलिन पावल, उन्होंने ही ये दावा पेश किया था, उन्होंने इतराफ़ किया कि ये सारी बातें झूठ थीं। यानी आम तबाही फैलाने वाले हथियारों की मौजूदगी का झूठा बहाना बनाकर इराक़ पर लश्कर कशी की गई, और आज जो इराक़ है सबके सामने है, 10 लाख से ज़ायद बेगुनाह इराकी शहरी अमरीका के हमलों में मारे गए, और आज भी वहाँ दहशत गर्दों के ज़रिए तबाही मचाई जा रही है, लेकिन कुछ ना मिला। आज दुनिया के सामने बात वाज़ह है कि गज़ा जैसे छोटे से इलाके पर इसराइल की तरफ से ममनू हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, गैर कानूनी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आम तबाही फैलाने वाले हथियारों का, जहरीली गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। गज़ा में मौजूद गैर मुल्की डॉक्टरों में जुमला नॉर्वे के एक डॉक्टर ने इस बात का इंकशाफ किया है कि ऐसी ऐसी जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिससे इंसानी अज़ा पिघल जाते हैं और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती, और उन्होंने खुला खत भी आलमी बरादरी का नाम लिखा। इन तमाम तर सबूत और शवाहिद के बावजूद दुनिया क्यों खामोश है और ये दोहरा मेयार क्यों झूठा बना बहाना बनाकर इराक का ये हाल किया गया, और इसराइल इस कदर सफाकियत का मुजाहरा कर रहा है लेकिन उस पर बोलने वाला कोई नहीं, ऐसा क्यों?
देखिए, ये बात तो बार बार साबित हुई है कि अमेरिका, इसराइल और दूसरे जो मगरबी ममालिक हैं वो उनका दोहरा मेयार रहा है मुस्लिम ममालिक से मुतालिक, और मुस्लिम मुल्कों में जो जो कुदरती वसाइल हैं उस पर कब्जा करने से मुतालिक वो पूरी तरह से उन्हें अपने जो जो उन्होंने अपना टारगेट बनाया हुआ है वो हर हाल में उसे हासिल करना चाहते हैं, उसमें चाहे गैर मामूली तादाद में इंसानी जानों का नुकसान हो या वहाँ माली नुकसान हो किसी भी मुल्क में। ये अभी तो सिर्फ इराक और शाम और लीबिया और मिस्र और कहाँ कहाँ किन किन मुल्कों में खराबी फैला चुके हैं पिछले कुछ बरसों में, तो वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने नज़रिए से पूरे खित्ते को चलाना चाहते हैं, और वो ये कतई नहीं चाहते कि इस खित्ते में कहीं डेमोक्रेसी कायम हो या यहाँ के अवाम अपने मुल्कों के फैसले खुद करें। वो बकौल खुद उनके उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो किसी भी दूसरे मुल्क को ईरान की तरह से आज़ादाना फैसले करता हुआ नहीं देखना चाहते इस खित्ते में। तो गजा पर जिस तरह से बहुत ही नुकसानदेह, बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म के ऐसे हथियार जो जो वार क्राइम्स में आते हैं, जो डंगी जो उन्होंने यानी इतने बड़े क्राइम किए हुए कर रहे हैं कि आम लोग जिन शहरियों को अपनी कोई खतरा नहीं सिवाय इसके कि वो वहाँ रहते हैं, वो जंग में बराह रास्त सामने नहीं है किसी भी फौज के, लेकिन उनको इसकी सजा दी जा रही है कि वो अपनी हुकूमत के साथ क्यों हैं या अपनी हुकूमत के या अपने रहनुमाओं के साथ क्यों हैं। तो ये उनको किसी इंसानी जान का कोई से कोई हमदर्दी हो या ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर कोई ख़ास उनकी कोई नज़र हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ जो जो एक बात जो समझ आती है वो ये है कि इसका हल सिर्फ ये है कि वो अपने यहाँ मुल्कों में अवामी बेदारी हो, और जो मगरबी प्रोपेगंडा है उसके मुकाबले में जो अल्टरनेट मीडिया जिसे हम कह सकते हैं, सोशल मीडिया हो या ईरान जैसे मुल्क या उस किस्म के कुछ और मीडिया आउटलेट्स हों जो इनकी सच्चाई बताएं, और मैं समझता हूं कि अवामी ताकत के सामने ये तोप, ये बंदूकें कोई काम नहीं आ सकेंगी, और आखिरकार इनको नाकाम होकर के यहां से जाना होगा, और फिलिस्तीनियों को उनका हक ज़रूर मिलेगा बशर्ते के इस खत्ते के मुस्लिम ममालिक की हुकूमतें किसी हद तक किसी तरह से उन्हें ये समझ आ जाए कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का साथ देना है, अगर वो इस्लाम के नाम पर भी नहीं मुसलमान के नाम पर भी कम से कम इंसानियत के लिए तो उन्हें एक जगह
होना चाहिए।
और मगरबी ममालिक का जो झूठ बोलने का तरीका है वो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तरीकों से सामने आ चुका है, उन्हें उनकी अपनी मर्जी होती है, जिसे चाहते हैं वो दहशतगर्द कहते हैं, जिसे चाहते हैं वो जालिम और मजलूम कहते हैं।
बहुत शुक्रिया आपका। फारूक चौहान साहब, आप देखें कि इसराइल ने जो एतराफ़ किया है अपने जितनी भी हलाकतों का, यही कहा है कि उसके फौजी मारे गए, लेकिन दूसरी तरफ जैसे कि आप खुद जानते हैं और आपने खुद अपने अभी गुफ्तगू में फरमाया कि फिलिस्तीन या गज़ा के इलाके में इसराइल का जो हमला हो रहा है वो ज़्यादातर बेगुनाह नियते और मासूम शहरियों पर हो रहा है, और उसमें भी ज़्यादातर मासूम बच्चे और ख़वातीन हैं। अभी कल की बात है कि 26 अफराद एक ही घर में बैठे रोज़ादार अफ्तार में मसरूफ़ थे कि वहाँ पर हमला हुआ, और एक ही घर के 26 अफराद जिसमें ज़्यादातर बच्चे थे वो शहीद हो गए। यानी बच्चों और ख़वातीन और सिनरसीदा लोगों को इस तरह से बेदर्दी के साथ शहीद करना फ़ौजियों के मुकाबले में, ज़ाहिर है कि अलबत्त फ़ौजी जो इसराइल के मारे गए वो जवाबी हमले मारे गए, तो क्या ये कहीं से किसी आलमी कानून के गिरफ्त में ये कार्रवाई इसराइल की नहीं आती है? फारूक चौहान साहब
जी, जी ये असल में हकीकत ये है कि इंसानी हकूक की ये बहुत बड़ी खिलाफवर्जी है जो इसराइल ने की है, और इंसानी हकूक के चैम्पियन इदारे, चाहे अक़वामे मुत्तहिदा हो, वो दुनिया के महज़ब ममालक हों, चाहे चाहे अमरीका हो, यूरोपीय ममालक।
जी मखसूस सिद्दीक़ साहब, लंदन स्टूडियो में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने भी खबरें सुनी होंगी और खबरों में सुना होगा कि अमरीकी दफ्तर खारजा की तर्जमान जेन साकी तक ने इस बात का एतराफ़ किया है कि गज़ा में जो इसराइली फ़ौजी फिलिस्तीनी मुजाहिदीन के जवाबी हमले में मारे गए हैं उनमें दो अमरीकी फ़ौजी भी शामिल हैं। तो अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं रह गई कि सिर्फ माली या सियासी या फ़ौजी हमायत अमरीका नहीं करता बल्कि उसके फ़ौजी आकर इसराइली फ़ौजियों के शाना बशाना फिलिस्तीनियों पर जुल्म ढाते हैं। क्या कहना चाहेंगे अमेरिका के इस किरदार पर?
देखिए ये तो इसमें तो हमको हैरत नहीं होनी चाहिए, ये तो मुझे तो इसका इल्म था कि हमेशा से ये हो रहा है, बल्कि खासतौर पर इनके तैयारे जो जो इनके जो पायलट्स हैं उसमें बहुत सारे अमरीकी पायलट्स हैं, इसका इसका इल्म है, इसके बारे में रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं पहले। तो अब चूंकि ये जो ये पैदल फौजी थे वो मारे गए, इत्तेफाक से तो खुल के बात सामने आ गई। लेकिन अमरीका को या इसराइल को, जैसे आपने सवाल किया था, इनको इस चीज़ों की इनकी कोई फिक्र नहीं है ना उनको कोई परवाह है, क्योंकि जब तक के खून मुसलमानों का खून, मुसलमानों की ज़िंदगी जो है, अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ कहते हैं कि हम लोग जो हैं सब ह्यूमंस हैं, हम इंसान नहीं बल्कि इंसान से नीचे, तो हमको हम लोगों को ख़त्म करना मारना यहाँ से इसकी कोई 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 कीमत नहीं है। एक इसराइली जो जान है वो हज़ारों मुसलमानों की जानों से ज़्यादा मानी जाती है इसमें, या एक यूरोपियन, एक गोरा सफ़ेद चमड़ी वाला, ये तो हमने मैंने इस मुल्क में रह के और यहाँ के ऊपर यानी बरतानिया में और यूरोपियन का इन लोगों का रवैया देखा हुआ है कि इनको कोई परवाह नहीं है। ये नहीं वैसे मुंह पे कुछ भी मीठी बातें करें लेकिन इनको कोई परवाह नहीं होती कि हमारे यहाँ कितनी जानें गई, लेकिन इनके यहाँ किसी को एक खराश भी आ जाती है तो इतना शोर मचता है। तो ये तो इस तो इंसानी हकूक जो है वो सिर्फ मुसलमानों पर नहीं है ये अप्लाई करते, वो अपने लोगों के लिए हैं उनके लिए। और जो अमरीका की वजह से, अमरीका की बदौलत, तो ये इसराइल इतना, देखिए मैं तो अमेरिका को भी नहीं कहना चाहता, मुझे गम जो जो है, जो अफसोस की बात है वो ये है कि इस इलाके में जो इस्लामी, जो सो कॉल्ड इस जो नाम निहाद जो इस्लामी ममालिक हैं और उसमें सबसे बड़ा जो जो मुसलमानों का दुश्मन जो जो मुल्क है वो सऊदी अरेबिया, वो किस किस कितने उसकी और सहयोगी हुकूमत से कितने नज़दीकी ताल्लुक हैं, इसकी वजह से यानी मतलब ये है कि अगर ये सिर्फ ये जो जो ममालिक हैं अरब ममालिक ये मिल के एक आवाज़ में इसराइल को अगर अगर ज़ुबानी वार्निंग भी दे दें तो भी मुझे यकीन है कि इसराइल रुक जाएगा। लेकिन ये जैसे हमने अभी आपके प्रोग्राम को शुरू में सुना था, अफसोस के साथ ये है कि बेशक कुछ कुछ ममालिक में मज़ाहरे हुए हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश वगैरह में, यहाँ वहाँ, लेकिन हुकूमतें बिल्कुल खामोश रही हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा है। और ये कि ये जो जो ये कहना कि तुर्की जो है वो ईरान का, सिवाय ईरान के किसी मुल्क ने खुल के इनकी मजम्मत नहीं की, किसी ने मुल्क ने अभी तक खुल के फलस्तीनियों की मदद नहीं की है, तो ये सब कहना फजूल है कि ईरान और तुर्की और सऊदी अरब को इसमें शामिल करना ही नहीं चाहिए कि सऊदी अरब तो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क है। तो ये तो यहाँ से शुरू होता है, यानी हर ये कितने यानी हैरत से, हैरत का लफ्ज़ नहीं है, ये बात ऐसी है कि जैसे आपने फरमाया कि कितने बच्चे और औरतों को उन्होंने शहीद कर दिया अभी 2 हफ्ते में, और एक कोई भी कोई एक इसके बारे में कोई लानत या कोई मजम्मत या कुछ किसी सऊदी अरब से, कतर से, जो जिन्होंने अभी शाम में जिस तरह से जो जो मुसीबत फैलाई है और जो उनकी उनको बागियों की मदद करके, उनको से इतना भी नहीं हुआ कि ये कहें कि भैया तुम ये क्यों मार रहे हो। एक रिपोर्ट अभी मैंने देखी थी, उसमें ये था कि औसतन ये है कि हर दूसरे या तीसरे दिन एक फलस्तीनी बच्चा जो है वो इनकी इसराइलियों के हाथ अपनी इसराइलियों के हाथ से अपनी जान खो देता है। तो समझ लीजिए कि कम से कम औसतन 100 से लेकर 150 बच्चे, 200 बच्चे हर साल तो ये इसी तरह से मारे जाते हैं। ये सब पूरी फिगर स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं। लेकिन ये जो एक चीज़ मैंने गौर की है कि अब मगरब में जो पब्लिक ओपिनियन है वो इसराइल के ख़िलाफ़ हो रही है, और इसी वजह से ये मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ये कोशिश हो रही है कि इसको जो इसराइल की जो जारी है तो उसको रोका जाए। और ये जो है हमास से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमास अपने रॉकेट फेंकना बंद करें। हमास अपने रॉकेट फेंकना नहीं बंद करेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये जो इसका
बहुत शुक्रिया आपका,
गज़ा का महाशरा खत्म नहीं होगा।
जी बहुत शुक्रिया काजमी साहब। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने यकीनन ख़बरों में सुना होगा कि कम से कम अब तक जो तादाद और फिगर सामने आई है जवाबी हमलों में फिलिस्तीनी मुजाहिदीन के 40 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए हैं, और इत्तलात यह मौसूल हो रही है कि खुद इसराइली फ़ौज के अंदर सरासीमगी फैल गई है, उनके अंदर काफ़ी मायूसी पाई जा रही है, और जो रॉकेट इस वक्त सहयूनी शहरों में गिर रहे हैं, चाहे वो सदरूत हो, चाहे वो तलबीब हो, चाहे वह हैफा हो, अब वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है, सरासीमगी पाई जा रही है। तो अब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मिस्र पहुँचे हैं जंगबंदी की कोशिश के तहत। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में जंग की पोजीशन कैसी है?
देखिए, ये जब अमरीकी वजीर खारजा मिस्र पहुंचे हैं, इसका मतलब ये है कि हमास ने जो जंगबंदी अब से 2-3 दिन पहले कबूल नहीं की थी, वो किसी तरह से ऐसे हालात बनाना चाहते हैं कि किसी तरह से जंगबंदी हो जाए। और ये जंगबंदी की ख्वाहिश अमेरिका की ख्वाहिश नहीं है, ये इसराइल की ख्वाहिश है। मुझे इस वक्त वो वाक़या याद आता है कि 2006 में जब हिजबुल्ला ने इसराइल को 33 दिन जंग में बाकायदा सामने की टक्कर दी थी, तो उन दिनों में लंदन में था, और शुरू में सभी मगरबी ममालिक के हुक्मरान ये बात कहते थे कि जब तक दहशतगर्दी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाएगी, यानी हिजबुल्ला पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाएगा, जंगबंदी नहीं होगी। लेकिन 15 दिन के बाद ही उन्होंने सभी मुल्कों के जो हुक्मरान जो अब से पहले जंग जारी रखने की बात कह रहे थे, वो जंगबंदी के लिए दुहाई देना शुरू कर दी थी उन्होंने। बिल्कुल उसी तरह की हालत अब है, और मैं समझता हूँ कि इसराइल, अमेरिका और उनके जितने भी चाहने वाले ममालिक हैं, वो ऐसा नहीं चाहते कि इसराइली जो फौजी मारे जा रहे हैं या जो जो रॉकेट्स हमास की तरफ से इसराइल पर तकरीबन पूरे मुल्क के तमाम शहरों पर हमले हुए हैं, और ड्रोन ने भी वहाँ पर सोर्टी की है, तो वो इसको जारी नहीं देखना चाहते, और इसीलिए वो जंगबंदी चाहते हैं, और वो अपना जानी नुकसान कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहते। लेकिन अब देखना यह है कि ये हमास और फतह की जो मिली जुली सरकार जो 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 बनने ही जा रही थी, जिसके खिलाफ ये सब कुछ इसे रोकने के लिए जो जंग हो रही है, उसमें इनका क्या रुख रहता है, और ये कब तक जंगबंदी अपनी शर्त पर मनवाने के लिए इन्हें तैयार कर पाते हैं। लेकिन ये बात है कि इस वक्त इसराइल, अमेरिका और उनके जो एलाइज हैं, वो जंगबंदी चाहते हैं, चूंकि उन्हें उस रास्ते पर जंग जारी नहीं नजर आ रही जिस रास्ते पर वो चाहते थे।
बहुत शुक्रिया मकसूद सिद्दीकी साहब। आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जबकि खुद इसराइलियों के एतराफ़ के पेश नज़र 40 इसराइली फ़ौजी मारे गए, जबकि फिलिस्तीनी गुरुओं का कहना है कि तादाद बहुत कम, इससे कहीं ज़्यादा इसराइली फ़ौजी मारे गए, तो जाहिर है कि शदीद सेंसर था। अब कल से जो है इसराइल ने इस बात की इजाज़त दी है कि मीडिया वाले ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे आएँ और जो इसराइली फ़ौजियों के नुकसान हुए हैं उनकी खबर वो दें, यानी इससे पहले भी बड़ी तादाद में इसराइली फ़ौजी मारे गए थे, और इत्तलात यह हैं कि उनके अंदर काफ़ी मायूसी पाई जा रही है इसराइली फ़ौजियों के अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि इस जंग का नक्शा आइंदा 2-1 दिनों में कैसा होगा आपके ख्याल में?
अब जैसा भी हमने सुना दिल्ली से, वो ये बिल्कुल सही है कि चूंकि अब इनके फौजी जो हैं वो भी मरने शुरू हो गए हैं, और इसकी तादाद मैंने जो मेरे मुझे जो इत्तला मिली तो उस हिसाब से कहीं ज़्यादा है, और ये 2006 के बाद सबसे ये अब ये पहला मौका है कि जबकि इतने इनके फौजी मारे गए। उस वक्त तो आपको याद होगा कि इनकी जो एक जो बहुत ही जो एलीट फोर्स थी उसको जौलानी कहते थे, जो जिनके जिनको कोई छू नहीं सकता था, जिसको हिजबुल्ला ने मारा पीछे से, मतलब ये कि हिजबुल्ला से डर के भाग रहे थे कि उनको गोलियां उनकी पीठ में लगी थी, 120 तो सिर्फ वो मारे गए थे उस वक्त, उसके अलावा इनके बहुत 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 फौजी शहीद बहुत बहुत फौजी कत्ल हुए थे। और ये जो है अब ये जो तादाद बढ़ गई है, क्योंकि इनका तो इनकी जो सारी कुव्वत है मगरिब की, और उसमें इसराइल को शामिल करना चाहिए, वो हवा से हवा के ऊपर बैठ के यानी हवाई जहाज से वो बम गिरा सकते हैं, या अगर फौजियों ने उन्होंने ज़मीन पर कदम रखा तो उनको मालूम है कि फलस्तीनी या कोई भी मुसलमान है वो मरने से नहीं डरता, इनको मरने से बहुत डर लगता है, इसीलिए ऊपर से ये बम गिराते रहते हैं या टैंक में बैठ के। चूँकि अब इनके फौजियों की जानें गई हैं, इनको अब ये फिक्र हो रही है, वो चाहते ही हैं कि किसी सूरत से ये कोई कोई ऐसा मामला हो जाए कि ये हिजबुल्लाह के साथ इनकी कोई ऐसी डील हो जाए कि ये वहाँ के ऊपर वो ये इनके रॉकेट अटैक्स बंद हों। ये भी नहीं चाहते कि मुहासरा बंद करें गज़ा का, और ये उसके साथ साथ ये भी चाहते हैं कि वो गैस के ऊपर कब के उसके फील्ड पर कब्जा करें। तो अब ये मुझे तो पूरी उम्मीद है कि 2-3 दिन में ये इनकी तरफ से पेशकश होगी कि ये रोकेंगे, लेकिन जाहिर है कि ये चूंकि जंग इन्होंने शुरू की है तो ये अपने ये उनकी हिजबुल्लाह के सॉरी माफ़ कीजिएगा हमास की शरारत के तो ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो अब देखना ये है कि आंधा 2-3 दिन में क्या होता है, और ये कि अगर इनके फौजी इसी तरह से मारे गए तो मैं समझता हूँ कि कम से कम जो इन्होंने इनकी जो फौजें जो आई हैं गाज़ा में वो तो बाहर हो जाएंगी। बेशक इनका जो हवाई जहाज से जो इनकी बमबारी है और टैंकों से वो हो सकता है जारी रहे। तो ये जो है ना ये चूंकि फौज इनके फौजियों की जाने गई हैं तो अब इनको इसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है कि किस तरह से एग्जिट स्ट्रेटजी। जी
बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आपने हमारे तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, अगरचे फारूक चौहान साहब से रब्ता हमारा कम हो सका किसी तकनीकी वजूहत की बिना पर, ज़ाहिर है कि टेलीफोन या नेट की जो खराबी रही होगी। बहरहाल जो बात निकल कर सामने आई ये है कि अगर इस्तक़ामत का मुजाहरा किया जाए, पाए मर्दी का मुजाहरा किया जाए और दुश्मन के सामने अपने दिफा के जज्बे से डट जाया जाए तो जो सूरत हाल आज गज़ा में है, गज़ा तकरीबन 7-8 साल से मुहासरे में है, वहाँ के आवाम सख्त मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन इस दौरान इसराइल के 3-4 बार के संगीन और बहीमाना हमलों का उन्होंने डट कर मुकाबला किया, चाहे वो 2009 का हो या 2012 का या इन दिनों जो उसके हमले जारी हैं। और इसराइल की पुष्ट पर अमरीका तमाम मगरबी ममालिक और इलाके की रजत पसंद हुकूमतें भी हैं, लेकिन गज़ा के अवाम तन तनहा मुकाबला कर रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने अब तक डट कर मुकाबला किया और जिस तरह से इसराइल और इसराइली फौजियों और इसराइली फ़ौज पर कारी ज़रबें लगाई हैं उससे बात साफ हो जाती है। एक जैसे कि हमें याद आता है कि हिज़्बुल्लाह लबनान के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि ये इसराइल तो मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर है और उसकी हैबत का बुत तो 2006 में ही पाश पाश हो चुका था, और शायद यही वजह है कि उसके बाद से मुसलसल इसराइल अपनी उस खोई हुई साख को दोबारा बहाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या किया जाए कि जब भी वो इस तरह की हमाकत करता है उसे और जिल्लत रसवाई और खारी का सामना करना पड़ता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।